ओम शांति। कल हम सभी ने बाबा से क्या अनुभव किया? प्यार का अनुभव किया सभी ने। बाबा ने कल आधा घंटा हमको प्यार से दृष्टि दी है ना। और आज की मुरली का मुख्य विषय क्या था? योग है ना, याद। याद से इन सत्व प्रधान बनेंगे। और तो आज मैंने सोचा कि हम ऐसी बात पर गहराई से बात करते हैं, योग की गहराई क्या है या याद की गहराई क्या है, राजयोग की गहराई क्या है, और कैसे हम राजयोग का अपने जीवन में प्रयोग कर सकते हैं। खाली अपने जीवन माना, एक तो हमारा शरीर जो हमारा इमीडिएट साथी है, आत्मा का इमीडिएट साथी कौन है? कौन है? हमारा शरीर इमीडिएट साथी शरीर है, और उससे पहले भी हमारा मन है, क्योंकि मन की बीमारियां और तन की बीमारियां दोनों ही इंसान को बहुत परेशान करती हैं। फिर हमारा जो घर जहां पर हम रहते हैं, हमारे घर, उस घर में भी समस्याएं होती हैं। जहां हम काम करते हैं वहां भी समस्याएं होती हैं, नहीं होती? होती है, नहीं होती? समस्याएं होती हैं वहां पर, और दुनिया में भी समस्याएं, समाज में भी समस्याएं होती हैं। तो उन सभी समस्याओं में हम राजयोग का क्या प्रयोग करें, कैसे हम उसके द्वारा अपने जीवन को सरल बना लें, आज हम इसी बात पर आपसे थोड़ा हम अगले लगभग पौना घंटा लगभग चर्चा करेंगे, कैसे राजयोग से हम अपने जीवन को सरल बनाएं। तो आज का विषय क्या रहेगा? राजयोग की गहराई और उसका प्रयोग। योग क्या चीज है? योग जब शब्द हम कहते हैं, आज बाबा ने कहा योग शब्द ठीक शब्द नहीं है, ये तो शास्त्रों का शब्द है, किंतु अगर योग शब्द को हमने ले भी, जैसे हमारे चार सब्जेक्ट हैं, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा, और इसी सीक्वेंस में है, तो योग शब्द का अगर सिंपल भाषा में कहें तो योग माना जोड़, योग माना कनेक्शन। किंतु योग को इंग्लिश में कहते हैं मेडिटेशन। अब मेडिटेशन शब्द जो है वो कहां से आया? आज हम इसी को हम थोड़ा सा वैज्ञानिक ढंग से देखते हुए थोड़ा सा इसकी गहराई में जाएंगे, ताकि बाबा ने ऐसे एक शब्द कहा, आपको याद होगा, योग कोई भी किसी को सिखा नहीं सकता है। सिखा सकता है कोई योग? योग करना होता है। जैसे हम किसी को सामने खाना रख सकते हैं, ज्ञान खाना है, भोजन है, और योग क्या है? उसको हजम करना है, खाने को हजम करना योग है। तो खाना खाएंगे, चबाना अपने आप पड़ेगा, और फिर खून में अंदर जाएगा, आंतों में जाएगा, उसको पचाना पड़ेगा, और पचने के बाद वो खून बनेगा, उससे शक्ति बनेगी। तो ऐसे ही ज्ञान हमें बाबा देता है, उस ज्ञान के आधार पे हमें उस ज्ञान को जीवन में अप्लाई करके, उस ज्ञान का जो कल मुरली में था, ज्ञान घास को उगाड़ते रहो, मतलब ज्ञान का मनन, चिंतन, मंथन, सिमरण हर महावाक्य का करते हुए, उसी को एक्चुअली योग कहते हैं। ज्ञान का मनन, चिंतन, मंथन, सिमरण, और फिर उसी में मगन हो जाना, मनन करते करते मगन हो जाना। मैं इसकी वैज्ञानिक साइंस डेफिनेशन भी लूंगा क्या है वो, और मैं आपसे उस पर भी डिस्कस करेंगे। और कैसे प्रैक्टिकली अगर हमारे शरीर में कोई तकलीफ है, चाहे वो हार्ट की है, चाहे वो सांस की है, चाहे माइग्रेन है, चाहे वो पेट की बीमारियां हैं, या कोई हड्डियों की बीमारियां हैं, उस पर भी हम कैसे प्रयोग कर सकें, उसी बात को भी लेंगे। तो योग की जो परिभाषा, जो इंग्लिश में परिभाषा है, इसे हम बताएं मेडिटेशन। मेडिटेशन शब्द कहां से आया? मेडिटेशन शब्द एक इंग्लिश शब्द है, मेडिटेशियो, उससे आया। तो मेडिटेशियो माना टू फोकस और टू कंसंट्रेट और टू रियलाइज ऑन द ट्रूथ। सत्य को रियलाइज करना, सत्य को अनुभव करना, सत्य को जीवन में फोकस करना, सत्य पे ध्यान केंद्रित करना, इसको योग कहते हैं। और सिंपल भाषा में मैं कहूं, सत्य को जीना, सत्य में जीना, सत्य को अनुभव करते रहना ही योग है। अब सत्य क्या है? सत्य क्या है बताएं? सत्य क्या? सत्य की परिभाषा क्या है? सत्य की परिभाषा दो उसमें मुख्य बातें सत्य में आती है, ट्रुथ। उसकी दो मुख्य बातें आती है, एक तो सत्य अविनाशी होता है, सत्य कभी मरता नहीं, सत्य एटर्नल होता है, मतलब उसका ना आदि मध्यांत नहीं होता है, सत्य सत्य ही होता है, सदा ही है। जैसे परमात्मा कहते हैं गॉड इज ट्रुथ, परमात्मा सदा सत्य है, और आत्मा भी इस शरीर में आने से पहले भी थी, शरीर में भी है और शरीर छोड़ने के बाद भी रहेगी, सदा है आत्मा, कभी भी खत्म नहीं होती, अविनाशी है। तो आत्मा सत्य है, परमात्मा सत्य है, और दूसरी जो परिभाषा है इसकी मुख्य है वो है सत्य कभी बदलता नहीं, असत्य बदलता रहता है, शरीर बदलता रहता है, आज कैसा है कल कैसा है, संबंध बदलते रहते हैं, नहीं प्रकृति बदलती रहती है, तो सत्य कभी बदलता नहीं, इसलिए आत्मा और परमात्मा दोनों सत्य हैं। तो अगर सिंपल भाषा में अगर कहें, अपने को आत्मा देखना, दूसरे को आत्मा देखना, अपने को आत्मा जानना, दूसरे को आत्मा जानना, और आत्मिक रूप में व्यवहार करना ही योग है। ज्ञान स्वरूप बनकर के रहना ही योग है। ये जो ज्ञान में चार बातें मुख्य आती हैं, ज्ञान में मुख्य चार बातें ही आती हैं, एक तो आत्मा का परिचय, परमात्मा का परिचय, आत्मा और परमात्मा के संबंधों में क्या संबंध है, आत्मा परमात्मा का क्या कनेक्शन है और उसका आपस में क्या संबंध है, और तीसरी जो बात आती है वो है जो तीसरी बात आत्मा परमात्मा का संबंध क्या क्या है, और चौथा ये संसृष्टि रूपी रचना, रचना के आदि मध्य अंत का परिचय। तो मुख्य ये चार बातें ही आती हैं। मैं इसको हिंदी में सिंपल भाषा में कहता हूं ए बी सी डी, ए फॉर आत्मा, बी फॉर बाबा, सी फॉर कनेक्शन एंड डी फॉर ड्रामा। तो ये चार बातें ही मुख्य हैं। तो मेडिटेशन क्या हुआ, इस ए बी सी डी का को बार बार रियलाइज करते रहो, बार बार अनुभव करते रहो, यही योग है, यही याद है। अब हम इसकी थोड़ी और गहराई में चलते हैं कि आत्मा अभी देवांग भाई बैठ, आत्मा का अनुभव गहराई से अनुभव करना, परमात्मा का गहराई से अनुभव करना, एक एक संबंध की अनुभूति करना, आत्मा और परमात्मा के एक एक गहराई से संबंध की अनुभूति करना, और फिर सृष्टि रूपी ड्रामा में हर आत्मा अपने कर्मों के हिसाब किताब के अनुसार एक्यूरेट पार्ट प्ले कर रही है। ये डी फॉर ड्रामा जो शब्द है, इस ड्रामा में मुख्य बात हमें क्या करनी होती है, क्या अनुभव करना होता है कि सृष्टि रूपी ड्रामा में हर आत्मा अपने इस जन्म और पिछले जन्मों के कर्मों के हिसाब किताब के अनुसार 100% एक्यूरेट पार्ट प्ले कर रही है, और परमात्मा जो है शिव बाबा, इसका क्रिएटर भी है, डायरेक्टर भी है, और हर आत्मा को उसके इस जन्म और पिछले जन्मों के कर्मों के हिसाब किताब के अनुसार 100% एक्यूरेट डायरेक्शन दे रहे हैं। इसमें ड्रामा में कोई दोषी नहीं है, कोई भी दोषी नहीं है, इसलिए अभी तक जो कुछ भी हुआ है अच्छा हुआ है, जैसे हम कहते हैं ना, अभी हमारा हमारे अंदर क्या प्रॉब्लम क्या आती है, हम अपने को आत्मा रियलाइज करते हैं, परमात्मा बाप को भी हम उसका परिचय में मिल गया है, हम अपने को आत्मा समझ के परमात्मा को याद करते हैं, संबंध से भी याद करने की कोशिश करते हैं, हर संबंध से, मुख्य 9 संबंध है हमारे बाबा के साथ, माता पिता शिक्षक सतगुरु बंधु सखा साजन सज्जन और बच्चा। बाकी तो हम हर संबंध बाबा से निभा सकते हैं, किंतु मुख्य 9 संबंध हमारे साथ हैं बाबा के। और चौथी, अब ये तीन बात हम समझ गए, एबीसी हम समझ जाते हैं, क्योंकि इसमें बाधा क्या बनती है, ड्रामा। जब हम अपने घर में, बाहर समाज में, जहां हम कार्य करते हैं, अपने सेंटर पे, कहीं भी हम ऐसी कुछ ऊपर नीचे देखते हैं ना, लोग हमारे से मिसबिहेव करते हैं, लोग हमसे गलत बिहेव करते हैं, कुछ हमारे साथ गलत घटना घट जाती है, तो हम उसके लिए दूसरों को दोषी ठहराते हैं, इसने मेरे साथ ऐसा किया, मेरा जीवन इसलिए खराब हुआ, और इसमें फिर योग टूट जाता है। एक्चुअली हुआ क्या है, 63 जन्म जो हमने लिए हैं द्वापर युग से, सत्युग त्रेता में, सत्युग में जब हम आत्माएं थी तो हम सातों गुणों से भरपूर थी। आज बाबा ने कहा ना, सुबह सुबह की लाइन यही थी, सवेरे सवेरे उठकर अगर अपने को आत्मा समझ के परमात्मा को याद करो तो आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान पावन बन जाएगी। सतो प्रधान का मतलब क्या है, सतो माना सात, प्रधान माना भरपूर, तो सतो प्रधान बनना माना आत्मा सातों गुणों से भरपूर, सतो प्रधान जिसमें जब आत्मा सातों गुणों से भरपूर है उस अवस्था को पावन अवस्था कहते हैं। रजो माना श्याम, जब ये सातों गुण आधे से कम हो गए, आधे से थोड़ा कम हो जाते हैं तो उसको रजो रजो कहते हैं, शाम हो गई है, मतलब लाइट आधी हो गई। और तमो माना अंधेरा, जब ये सातों गुण लगभग ना के बराबर रह जाते हैं तो उसको कहते हैं तमो प्रधान। तमो प्रधान शब्द जो है, जब आत्मा तमो प्रधान, जब सातों गुण ना के बराबर रह जाते हैं, उस स्थिति को हम पतित अवस्था कहते हैं, जिसमें आत्मा पांचों विकारों के वश में हो जाती है, कर्मेंद्रियों के वश में हो जाती है। तो जब हम सत्युग में आए थे तो आत्मा सातों गुणों से भरपूर थी, आत्मा की 3 सूक्ष्म शक्तियां, बुद्धि मन संस्कार, ये बुद्धि मन संस्कार ऑपरेट करते हैं किसके द्वारा, उसके 5 कर्मेंद्रियां हैं, आंख नाक कान मुख और त्वचा, स्किन, हमारी पूरी बॉडी पे स्किन है, मुंह के अंदर भी स्किन है, सांस की नाली में भी स्किन है, फेफड़े के अंदर भी स्किन है, हमारी आंतों की नाली में भी स्किन है, किडनी के भी जहां खून छनता है वहां भी स्किन है, हमारी जो आर्टरीज हैं, हमारी जो वेन्स हैं, जिनमें खून बहता है उसके अंदर भी स्किन है, वो अंदर की स्किन है, वो सेंस करती हैं, जैसे हमारी त्वचा सेंस करती है ऐसे ही वो भी सेंस करती है, हमारे फेफड़ों की स्किन क्या सेंस करती है, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड को सेंस करती है कि ऑक्सीजन को अंदर लेना है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना है, हमारी हार्ट की आर्टरीज के अंदर जो त्वचा वो क्या सेंस करती है, एंडोथीलियम क्या सेंस करती है कि बैड कोलेस्ट्रॉल को भारी बैड कोलेस्ट्रॉल खून में बहने के लिए उसको खून में ही बहना चाहिए, जमना नहीं चाहिए, नसें खुली रहनी चाहिए, खून चिपकना नहीं चाहिए, क्या चीज को अंदर लेना है क्या चीज को अंदर नहीं लेना है उसको पता है। अगर वो सेंस खत्म हो जाए तो क्या होगा, वो कोलेस्ट्रॉल अंदर जाना शुरू हो जाएगा। तो ये सारी सेंस जो है, ये 5 कर्मेंद्रियां और हमारे शरीर 80,000 अरब कोशिकाओं का बना हुआ है, इन सबको चलाने वाली कौन, आत्मा। और आत्मा कैसे चलाती शरीर को, इन 7 गुणों के आधार से चलाती है। आत्मा यहां है तो 7 हमारी पूरी 80,000 अरब कोशिकाएं काम कर रही हैं, और आत्मा अगर निकल गई सब कुछ बंद हो जाता है। तो जब आत्मा 7 गुणों से भरपूर है तो ये हमारे शरीर की एक एक सेल 7 गुणों से भरपूर है, ज्ञान से भरपूर है, ज्ञान माने समझ है आत्मा में कि मैं आत्मा हूं, मैं चैतन्य हूं, शरीर जड़ है, मैं शरीर को चलाने वाली हूं, ये आत्मा को समझ है। और आत्मा को समझ है कि मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूं, ऑलमाइटी अथॉरिटी की संतान हूं, और मैं आत्मा ही सत्य हूं। और उसको समझ है कि संबंध की बाबा के साथ समझ है कि मेरे सर्व संबंध उसके साथ हैं, सत्युग में बाबा हमारे साथ साकार में नहीं होता है, किंतु हमारे संस्कारों में बाबा होता है। संस्कारों के रूप में बाबा हमारे, बाबा के गुण, बाबा की शक्तियां हमारे साथ संस्कारों के रूप में रहती हैं। और आत्मा को यह भी समझ है, गहराई से ड्रामा की भी समझ है कि कोई किसी की पति पत्नी क्यों बनते हैं, हम उसी माँ बाप के पास क्यों जन्म लेते हैं, पिछले जन्मों का हमारा हिसाब किताब है, दोस्त क्यों बनते हैं, भाई बहन क्यों बनते हैं, पिछले जन्मों का हमारा हिसाब किताब उन आत्माओं के साथ है, उस हिसाब किताब के आधार पे हम उस जन्म में उस हमारे साथी बनते हैं, या हम उनके बच्चे बनते हैं, या माता पिता बनते हैं, या भाई बहन बनते हैं, या बच्चे बनते हैं, और जैसा हमने व्यवहार किया होता है वैसा ही वो इस जन्म में हमारे साथ व्यवहार करते हैं। कोई भी गलत नहीं करता है। मैंने बताया हर आत्मा अपने इस जन्म और पिछले जन्मों के कर्मों के हिसाब किताब के अनुसार 100% एक्यूरेट पार्ट प्ले कर रही है। अब हिसाब किताब क्या है? हिसाब किताब ये है कि अगर 100 साल पहले आपने किसी से 1000 रुपये उधार लिया हो और वो व्यक्ति इस जन्म में आपका बच्चा बन के आ जाए या आपका कोई साथी बन के, दोस्त बन के आ जाए, तो कितना वापस करना पड़ेगा उसको? 100 साल पहले आपने 1000 रुपये उधार लिया था, अब कितना वापस करना पड़ेगा आपको? आपको पता हो शायद 1946 तक लगभग 3 गुना, 1 साल में 3 साल में पैसा दुगुना होता था, 46 से लेकर के और फिर 66 तक 5 साल में दुगुना होता था, 4 साल में दुगुना होता था, और 66 से लेकर 86 तक 5 साल में दुगुना होता था, और अभी 86 से लेकर के अभी 4 साल में और 7 साल में 8 साल में दुगुना होता है। तो उसमें हिसाब किताब बताया मुझे हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट ने बताया कि अगर उसका ब्याज 1000 रुपए का ब्याज कितना बनता है? 52,48,00,000 रुपए बनता है। तो मतलब जो आपने 1000 रुपए उससे उधार लिया था, 100 साल के बाद वो व्यक्ति आपका दोस्त बन के आएगा, या आपके बच्चा बन के आएगा, या बच्ची बन के आएगा, या पति पत्नी बन के आएंगे, या कुछ भी बन के आएगा, माँ बाप बन के आएंगे, उसको आपको 1000 रुपया मूलधन और 52,48,00,000 रुपया उसको वापस करना पड़ेगा। ये हिसाब किताब है। अगर आपने किसी व्यक्ति को 100 साल पहले गाली दी थी एक, तो कितनी गाली खानी पड़ेगी? अगर एक बार दुख दिया था तो कितना दुख सहना पड़ेगा उसी व्यक्ति से? एक बार दुख दिया था सिर्फ, तो कितना दुख हो जाएगा ब्याज में? तो ये कर्मों का हिसाब किताब है, और ये कर्मों का हिसाब किताब हमारा योग लगने नहीं देता है, हमारी याद में बाधा बनता है। हम चाहते हैं याद करना, 63 जन्म हमने, हमारे पिछले जन्म हमने क्या किया है, देहभान के वश होकर के अपने साथियों के साथ व्यवहार किया, अपने हमारे माता पिता बन के आए, भाई बहन बन के आए, पति पत्नी बन के आए, दोस्त बन के आए, बच्चे बन के आए, हमने देहभान के वश, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के वश, उनके भी बहुत बड़ा परिवार है, आलस के वश, अलबेलेपन के वश, दूसरे में सारे दोष निकालने की आदत के वश, बदला लेने की भावना के वश, शक करने की आदत के वश, अनुमान लगाने की आदत के वश, चिंता भय जल्दीबाजी ईर्षा द्वेष की आदत के वश, हमने उनके साथ बहुत सारे विकर्म किए। और वही व्यक्ति इस समय हमारे माता पिता भाई बहन दोस्त बनते हैं, और वो उन्हीं से हमारा हिसाब किताब है, वो हमें खींचते हैं। हम योग लगाना चाहते हैं, वो हमारे हमें खींचते हैं, और वो आदतें हमारे अंदर भी हैं, विद्यमान हैं, वो भी हमारा ध्यान खींचते हैं। यही माया है, माया कुछ और नहीं है, माया यही माया है, यही 5 विकार अंदर अंदर हमें खींचते हैं। तो जो मैं आपसे बात कर रहा था ड्रामा की बात, तो जितना अधिक ये ड्रामा में जो ये बात है कि जो हुआ अच्छा हुआ, हमारा योग क्यों नहीं लगता है? क्योंकि हम क्या समझते हैं, मेरे साथ जो हुआ अच्छा नहीं हुआ, मेरे साथ उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, वो मेरे साथ ऐसा कर रहा है, मेरे साथ वो ऐसा कर रही है, मेरा जीवन ही खराब हो रहा है, इससे ऐसा हो रहा है, उससे वैसा हो रहा है, ये अगर अलग हो जाए, ये कुछ अलग हो, सिस्टम हो जाए तो मैं ठीक हो जाऊं, मेरी स्थिति अच्छी हो जाए, और रोज नई नई समस्याएं आती रहती हैं। यही योग में हमारे विघ्न के रूप में आते हैं, और बाबा ने जो हमें बताया ये जो ज्ञान मुरली, और ज्ञान मुरली जो है बेसिकली उसमें भी चार ही बातें होती हैं, आत्मा का परिचय, परमात्मा का परिचय, आत्मा के साथ परमात्मा के क्या क्या संबंध है, उनकी उनकी गहराई बात नीचे सतगुरु तो बाबा रोज बताते हैं कि तू बार बार फिर बाबा अलग संबंध भी बताते, धोबी का संबंध जैसे बाबा कहते हैं ना आत्मा के जो कपड़े हैं अभी था ना मूतपलीति कपड़े हो गए, तो कौन से कपड़े मूतपलीति हो, शरीर मूतपलीति नहीं, शरीर तो मूतपलीति हो ही गया है, कि तो आत्मा के कपड़े कौन से हैं, आत्मा के कपड़े हैं मन बुद्धि संस्कार, ये मन बुद्धि संस्कारों में ये पांचों विकार फंस गए हैं, पांचों विकार के दाग लगे हुए हैं, और बाबा इन शरीर को शरीर रूपी कपड़े को साफ करने नहीं आते हैं, आत्मा के ये तीनों कपड़े जो है ना मन बुद्धि संस्कार इन तीनों को साफ करने के लिए आते हैं, इसलिए बाबा को धोबी कहते हैं, बाबा को हम सौदागर भी कहते हैं, रत्नागर भी कहते हैं, शराफ भी कहते हैं, बाबा क्या करते हैं ये हमारी आत्मा में से जो एक खाद है ना मन बुद्धि संस्कार के उसको निकाल देते हैं, तो जो हुआ अच्छा हुआ, जितना अधिक हम ABCD का बार बार चार बातें ना मुरली में सृष्टि के आदि मध्य अंत का परिचय होता है, बाबा भिन्न भिन्न रमणीक तरीके से रोज मुरली में कभी किसी बात को, जैसे आज की मुरली ज्यादा योग के ऊपर थी, कभी ज्ञान की गहराई पे होती है, कभी सेवा के ऊपर होती है, कभी धारणाओं के ऊपर होती है, कल जैसे दैवी गुणों की धारणा के ऊपर बात थी, तो बाबा डिफरेंट डिफरेंट तरीके से बहुत रमणीक तरीके से हमको मुरली सुनाते हैं, और परंतु बेसिक बातें चार ही होती हैं, आत्मा का परिचय, परमात्मा का परिचय, आत्मा परमात्मा के संबंध का परिचय, और चौथा ड्रामा के आदि मध्य अंत का परिचय, तो सार रूप में अगर कहें तो इसी ABCD को, इसी मुरली को सारा दिन हम अनुभव करते रहें, रियलाइज करते रहें, इसी मुरली को जीते रहें, इसके चार स्टेप हैं, बाबा ने कहा एक्चुअली मुरली सुनना, पहले इसमें छह स्टेप हैं एक्चुअली, पहला है श्रवण, मुरली को सुनना, मुरली ही ज्ञान है, मुरली बाबा की श्रीमत है, बिना ज्ञान के योग नहीं है, पहला सब्जेक्ट ज्ञान है फिर योग है, तो पहली बात है श्रवण, जब हम बाबा की मुरली सुनते हैं सुबह, हम कहां रिकॉर्डिंग करते हैं, जैसे हम रिकॉर्डिंग करते हैं, जैसे हम गॉडलीवुड में जाते हैं तो वहां पर एक स्पेशल रूम, गॉडलीवुड में स्पेशल रूम होते हैं जिनको शूटिंग या रिकॉर्डिंग रूम कहते हैं, डबिंग रूम होते हैं जहां आवाज रिकॉर्ड की जाती है, कोई साउंड प्रूफ होते हैं, वो किसी तरह की आवाज नहीं, वहां AC की आवाज भी नहीं होती है, वहां AC भी नॉन बिल्कुल साइलेंस वाले AC होते हैं जिनमें जरा भी आवाज ना हो, तो जो बाबा का जो घर है जहां हम सेंटर कहते हैं या मधुबन है, ये वो जगह है जहां पर आवाज बहुत कम है, ना के बराबर आवाज, माना किसकी आवाज, विकारों की आवाज कम है, दुनिया की आवाज कम है, मन की आवाज कम है, जो बाबा ने पिछली मुरली सुनाई, मन की आवाज भी कम है, मुख की आवाज भी कम है, मन का मौन है, तो ये जो है ये स्थान वो है जहां पर रिकॉर्डिंग हो सकती है, मतलब श्रवण हो सकता है, मुरली को आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, तो सुबह सुबह सही रिकॉर्डिंग होना आवश्यक है, कई लोग घर में ही मुरली पढ़ लेते हैं, कई लोग TV पे मुरली देख लेते हैं, कई लोग मोबाइल पे मुरली देख लेते हैं, वो मुरली की रिकॉर्डिंग नहीं है, तो पहली बात है सही रिकॉर्डिंग होनी चाहिए, बाबा के सेंटर में बैठ के, बाबा के घर में बैठ के 45 मिनट या 1 घंटा जो भी लगता है, हम बाबा की गोद में बैठ के मुरली सुने, बाबा कितनी दूर है हमसे, सूक्ष्म वतन कितनी दूर है हमसे, कितनी दूर है, एक सोच की दूरी पर है, सोचा और पहुंचा, बाबा की गोद कितनी दूर है हमसे, सोचे और पहुंचे, है ना, तो बाबा हम छोटे बच्चे हैं ना, बाबा कहते मीठे बच्चे, तो बाबा की गोद में बैठ के मुरली सुने, तो मुरली सुने और मुरली सुनने के बाद फिर जैसे हम वॉकिंग करते हैं और दिन में सारा दिन हमारे पास होता है, तो मनन करें, मनन रिवाइज करें, मन मन में रिवाइज करें मुरली, बाबा ने आज क्या क्या कहा, बार बार रिवाइज करें, क्योंकि हमें हमारी स्मृति में क्या बसा हुआ है, क्या रिकॉर्ड है, हमारी स्मृति में मुरली रिकॉर्ड, ज्ञान रिकॉर्ड नहीं है, अज्ञान रिकॉर्ड है, काम विकार रिकॉर्ड है, क्रोध रिकॉर्ड है, लोभ रिकॉर्ड है, मोह रिकॉर्ड है, अहंकार रिकॉर्ड है, चिंता रिकॉर्ड है, डर रिकॉर्ड है, दूसरों के दोष रिकॉर्ड है, इसमें ये खराबी है, इसमें ये खराबी है, इसमें ये खराबी है ना, इससे बदला लेना है, इससे बदला लेना है, इससे बदला लेना है, ईर्ष्या द्वेष रिकॉर्ड है, नहीं आलस रिकॉर्ड है, मेरा सोने का समय है, मुझे तो आराम करना होता है, इतने के मुझे घंटे आराम चाहिए, केयरलेसनेस की आदत, अलबेलेपन की आदत रिकॉर्ड है, हमें वो रिकॉर्ड है, रिकॉर्डिंग उसकी है, हमारे अंदर 1% रिकॉर्डिंग में ज्ञान की नहीं है, हमको रिकॉर्डिंग करनी है। वो ये सब संस्कार, हमने गलत काम किए हैं तो बने हैं, रिकॉर्डिंग हुई है, कर्म करने से रिकॉर्डिंग होती है, अब सुनने से रिकॉर्डिंग नहीं हुई, हमने सुनी रिकॉर्ड नहीं हुआ, अब उसको रिवाइज करो, उस मुरली को या तो लिख लो कागज पे, या फिर मुरली फोटोकॉपी आजकल मिल जाती है, तो मुरली को जेब में रखो। इस मुरली को मैं बाबा का लव लेटर कहता हूं, बाबा का लव लेटर है कि नहीं है? लव लेटर कहां रखते हैं, कहां रखते हैं? ये बाबा की मुरली है ना, कहां रखनी चाहिए? लव लेटर कहां रखते हैं बताओ? दिल के पास, नहीं दिल है ना यहां पर, दिल के पास। और लव लेटर पढ़ते कब है, कब पढ़ते हैं? जैसे आसपास देखते हैं कोई नहीं है तो क्या करते हैं, लेटर छुपा के निकालते हैं, है ना, ऐसे एक लाइन पढ़ते हैं, मुस्कुराते हैं और फिर छुपा लेते हैं, है ना, और फिर वो लाइन के बारे सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, और फिर जैसे मौका लगता है अब कोई नहीं है, फिर लेटर निकालते हैं, निकालते हैं, फिर क्या करते हैं, फिर ऐसे छुपा के दूसरी लाइन पढ़ते हैं, बाबा ने क्या कहा, जो मेरे साजन ने मेरे लिए क्या कहा, हम सजनी है ना, बाबा साजन है तो मेरे लिए क्या कहा, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत अच्छी अच्छी बात, दुनिया वाले हमें कुछ भी बोलते हैं, किंतु बाबा मुझे बड़े प्यार करता है, मुझे बहुत प्यार से बोलता है, मुझे बहुत प्यार से देखता है, तो बाबा की बातों को फिर हम ऐसे बार बार रिवाइज करें। हमने 10 पॉइंट मुरली के लिखे कागज पे, जेब में रखें, हर आधे घंटे में 15 मिनट में जब मौका मिले एक एक महावाक्य पढ़ लें, रिवाइज करें बाबा ने आज क्या कहा, वरदान है तो रिवाइज करें बाबा ने आज क्या कहा, स्लोगन था आज क्या कहा बाबा ने, तो मुझे ऐसा बनना है, तो मनन मन रिवाइज करना, चिंतन चिंतन माना, अब चिंता लगनी चाहिए मैं कैसे बनूं, क्या करूं, अभी मुझे तो बनना है पर मैं कैसे बनूं, बाबा के तुम्हें बहुत मीठा बनना है, अब मीठा कैसे बनूं, लोग तो मेरे साथ बहुत कड़वा बोलते हैं, बहुत कड़वा बिहेव करते हैं, मैं कैसे मीठा बनूं, मीठे का मतलब क्या है, है ना, उसकी अब गहराई में जाना, चिंतन माना गहराई में जाओ, चिंता नेगेटिव शब्द है, चिंतन पॉजिटिव शब्द है, क्या करूं मुझे बनना है, चिंतन करो कैसे बनूं, क्या करूं, चिंतन, और मंथन माना कैसे बनूं, अब फिर उसको मंथन करो, बाबा ने उस मुरली में ऐसा कहा था, उस मुरली में ऐसा कहा था, बाबा ने उसके लिए ऐसा कहा था, फिर बाबा से बात करो, जब हम चिंतन करते हैं ना तो हमारी लगन लग जाती है, बाबा से हमारा कनेक्शन लग जाता है, क्योंकि दुनिया में कोई आंसर में समझ नहीं आता, कोई समझा नहीं सकता हमें, बाबा से जब हमारा कनेक्शन लगता है तो हमारे फिर हमारा चिंतन करते करते बाबा से बुद्धि लग जाती है, और बुद्धि लगने से क्या होता है, हमारा हम बाबा से जैसे पूछते हैं, बाबा आपने कहा मीठा बनो, मीठा का मतलब क्या है, बाबा कहता है मैं मीठे का पहाड़ हूं, स्वीट का पहाड़ हूं, तुम स्वीटेस्ट बनो, कैसे बनेंगे, तो बाबा इसका क्या मतलब है, स्वीट आप स्वीट का पहाड़ कैसे हो और मैं स्वीटेस्ट कैसे बनूं, तो बाबा फिर क्या करता है, बाबा से हमारी बुद्धि में बताया कि बच्चे देखो स्वीट माना मीठा माना सतो प्रधान, सातों गुणों में भरपूर, बच्चे मैं स्वीट का पहाड़ हूं मतलब मैं सातों गुणों का सागर हूं, और तुम्हें क्या बनना, सातों गुणों में भरपूर बनना है, इसे कहते हैं मीठा, जो सातों गुणों में भरपूर होगा वो कैसा होगा, समझ से भरपूर है, पवित्रता से भरपूर, शांति से भरपूर, प्रेम से, रूहानी प्रेम से भरपूर, अतिंद्रिय सुख से भरपूर, आनंद से भरपूर, शक्तियों से भरपूर है, उसका व्यवहार सबसे कैसा होगा, कोई कुछ भी करे कुछ भी कहे उसका व्यवहार उसके साथ मीठा होगा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव नहीं होगा, तो ये जो है, ये जो व्यवहार है हमारा उससे, तो बाबा ने सही इसका ये मंथन निकला, स्वीट का पहाड़ और स्वीटेस्ट का या मीठे का मंथन निकला, है ना, अब जो मतलब निकला सतो प्रधान, मैं सातों गुणों से भरपूर बनूं, कैसे बनूं, मुझे याद करो, सीट के पहाड़ को याद करो, सातों गुणों के सागर को याद करो। अब ये बात को मैं सिमरण करूं, सिमरण माना कार्य में लगाऊं, कार्य करते करते ये बात मैं ध्यान रखूं कि मुझे क्या करना है, सातों गुणों में भरपूर बनना है। कैसे बनना है? बाप सागर है, उससे कनेक्शन जोड़ के बनना, उसको बाप के रूप में, माँ के रूप में, टीचर के रूप में, गुरु के रूप में, हर रूप में उसको मुझे याद करते जाना, हर समय याद चाहिए। तो ये फिर सिमरण माना, सिमरण माना रिवाइज नहीं करना, सिमरण मन में रिवाइज, सिमरण माना सिमर सिमर सुख पाओ, मतलब उसको बार बार कार्य में लगाओ तो सुख मिले, तो उसको बार बार फिर कार्य में लगाओ, कार्य करते हुए, हर कार्य करते हुए, चाहे हम घर में काम कर रहे हैं, चाहे दुकान में काम कर रहे हैं, चाहे हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, पेशेंट देख रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं, खाना खा रहे हैं, चलते फिरते, उठते बैठते, फिर हम ये करते रहें, तो ये अब जब हम कार्य में लगाएंगे तो रिकॉर्ड हो जाएगा, बिना कार्य में लगाए रिकॉर्ड नहीं होगा, और जब कार्य में लगाएंगे तो संस्कार बनेगा, आदत बनेगी, बिना कार्य में लगाए आदत नहीं बनेगी, खाली मुरली सुनने से हमारी आदत नहीं बनेगी, चिंतन से भी आदत नहीं बनेगी, मंथन से भी आदत संस्कार में नहीं आएगा, किंतु जब सिमरेंगे, सिमरेंगे मतलब कार्य में लगाएंगे तो हमारे अंदर रिकॉर्डिंग हो जाएगी। अब ये रिकॉर्डिंग, नई रिकॉर्डिंग हो गई मेरे अंदर, नया संस्कार बन गया, पुराना संस्कार था ईर्ष्या द्वेष का, चिंता भय का, दूसरों में गंदगी देखने का, दूसरों में अवगुण देखने का, अब नया संस्कार बन गया ये अपने को आत्मा समझ के शिव बाबा को याद करने का, सातों गुणों में व्यवहार करने का, अपने को आत्मा समझ के दूसरे को आत्मा देखने का, तो ये जो अब ये बन गया स्मृति स्वरूप। ऐसे मुरली के हर पॉइंट, 10 पॉइंट मुरली के रोज होते हैं लगभग, वरदान स्लोगन अलग होता है, 12 पॉइंट हो गए, तो इन 12 पॉइंट्स को दिन में कम से कम हर घंटे में 2-3 बार उसको हम रिवाइज करें, चिंतन करें, मंथन करें, सिमरण करें, और इसको रिकॉर्डिंग होती जाए। तो ये जो स्थिति है, तो जितना इस एबीसीडी को हम रिवाइज और रियलाइज करते हैं, हमारी मन और बुद्धि पवित्र होती जाती है। पवित्रता हमको बनानी पड़ती, सत्युग में हमारे अंदर सातों गुण भरपूर थे, हमें बनाना कुछ नहीं पड़ता था। अभी बाबा ने जो ज्ञान दिया, कई हमारे भाई बहन क्या करते हैं, बैठ के ऊपर से ज्ञान, सागर से ज्ञान की किरणें आ रही हैं, पवित्रता की किरणें आ रही हैं, शांति, ऐसे किरणें नहीं आती हैं। हमको, हमें जो ज्ञान मिला, इसको कार्य में लगा करके, इसको रियलाइज करके, इसको अनुभव करके, हमें पवित्रता लानी है, पवित्रता बनानी है। जो हुआ बहुत अच्छा हुआ, जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। क्यों अच्छा हो रहा है? क्योंकि शिव बाबा अब मेरे साथ है, हर संबंध से मेरे साथ है, हर जगह मेरे साथ है, कहीं भी हूं मैं वहीं पर मेरे साथ है, और आना फिर जो आने वाला समय है, जो होने वाला है, वो सबसे अच्छा होने वाला, वो हमको पता है, सत्युग में जाने वाले, शिवालय में जाने वाले। तो ये जितना हम एबीसीडी को हम अभ्यास, मतलब मुरली का मनन चिंतन मंथन सिमरण करते जाएंगे, उतनी मन और बुद्धि हमारी पवित्र होती जाती है। नॉर्मली क्या होता है, मैं आपको बताऊं, साइंस के हिसाब से अगर हम किसी का ब्रेन का ईईजी करके देखें, तो हमारी बीटा रिदम होती है, बीटा रिदम है ना, हमारी लगभग 15 हमारी फ्रीक्वेंसी होती है। अगर विचारों के रूप में कन्वर्ट करें तो लगभग 1 मिनट में हमारे 15 विचार चल रहे होते हैं। उसमें 7-8 विचार कॉन्शियस माइंड से आते हैं, 7-8 विचार सबकॉन्शियस माइंड से आ रहे होते हैं। सबकॉन्शियस में हमारा कंट्रोल नहीं होता, सबकॉन्शियस जो गलत हम करते हैं वो सबकॉन्शियस माइंड में रहते हैं, जो हम गलतियां करते हैं, जिसपे हम डिसीजन नहीं ले पाते, जिसमें हम कंफ्यूज रहते हैं, जिन बातों में, उसे कहते हैं सबकॉन्शियस माइंड में रहते हैं वो बातें। तो वो हमारे कंट्रोल में नहीं होती, वो हमने जो कर लिया वो बार बार हमारे कॉन्शियस माइंड को तंग करता रहता है। तो ये 15 विचार नॉर्मल आदमी को दुनिया में आते हैं, किंतु जैसे ही हम इस एबीसीडी का अभ्यास करना शुरू करते हैं, मैं इसके पहले अपोजिट जाता हूं, जब हम 20 विचार करते हैं, मान लो मैं किसी बारे में सोच रहा हूं, चिंता कर रहा हूं, तो मेरे 20 विचार हो जाते हैं, उसमें 20 विचार जब होंगे तो मेरे 7 की बजाय 6 विचार कॉन्शियस माइंड से आएंगे और 14 विचार मेरे सबकॉन्शियस माइंड से आ रहे हैं। मतलब अब गाड़ी मेरे कंट्रोल से बाहर, पहले बराबर बराबर से, अभी 14 विचार मेरे कंट्रोल में नहीं है। इसे चिंता कहते हैं। और जब हम ज्यादा चिंता कर लेते हैं तो क्या होता है, मेरे 5 विचार मेरे कॉन्शियस माइंड से आते हैं, 20 विचार मेरे सबकॉन्शियस माइंड से आ रहे हैं। इसको भय कहते हैं, डर। अब सिर्फ मेरा कंट्रोल 1/4 है। और जब हमें हमारे 4 विचार सबकॉन्शियस माइंड से आते हैं और 26 विचार सबकॉन्शियस माइंड से आ रहे हैं, उसको चिड़चिड़ापन कहते हैं, इरिटेशन कहते हैं। और सिर्फ जब 2 विचार मेरे कॉन्शियस माइंड से आ रहे हैं और 33 विचार सबकॉन्शियस माइंड से आ रहे हैं, उससे गुस्सा कहते हैं। गुस्से में आदमी को समझ रहती है क्या? गुस्से में आदमी को समझ होती है क्या? कुछ भी बोलता है, कुछ भी करता है। और जब आदमी को एक विचार सिर्फ सबकॉन्शियस माइंड से आता है और 39 विचार सबकॉन्शियस माइंड से आ रहे हैं, तो उसको आदमी इंपल्सिव हो जाता है, दूसरे को मारने को भागता है। और जब एक भी विचार उसके कॉन्शियस माइंड से नहीं आता, सारे सबकॉन्शियस माइंड से आ रहे हैं, तो आदमी पागल हो जाता है। उसे डिप्रेशन कहते हैं, बहुत सीवियर डिप्रेशन, या स्किज़ोफ्रेनिया कहते हैं, साइकोसिस कहते हैं। तो आज के इंसान की हालत क्या है? चिंता और भय वाली हालत है। मतलब 30 विचार 35, हर आदमी चिड़ा हुआ है, इरिटेटेड है। तो आज 25 से 30 विचार एक मिनट में लोगों को आ रहे हैं दुनिया में। हम ब्राह्मणों को लगभग 15 विचार एक मिनट में आते हैं नॉर्मली। जब हम इस एबीसीडी का अभ्यास करते हैं, अनुभव करते हैं, एबीसीडी को रियलाइज करते हैं, तो हमारे विचार धीरे धीरे कम होने लगते हैं। और जब 10 विचार के आसपास होते हैं तो हमें थोड़ा थोड़ा अपना मन बुद्धि साफ साफ लगती है, थोड़ी सी क्लीन लगती है। इसी को हम कह सकते हैं थोड़ी पवित्रता। जब 8 विचार हो जाते हैं, जितना और करते रहो और करते रहो, उसे हम 8 विचार होते हैं, उसे हम शांति कहते हैं। शांति माना सिर्फ पॉजिटिव विचार, ना नेगेटिव ना वेस्ट। नॉर्मली हमारे 90% विचार या तो सबकॉन्शियस माइंड से आ रहे हो, या तो पास्ट से आ रहे थे, या भविष्य से आ रहे होते हैं, पास्ट से या भविष्य से। और जब हम एबीसीडी का अभ्यास करते हैं तो हमारे ज्यादा विचार प्रेजेंट से आने लगते हैं, पास्ट के और भविष्य के विचार आने खत्म हो जाते हैं, कम होते जाते हैं। जैसे कहा ना, जो हुआ अच्छा हुआ, विचार आने बंद हो गए। जो होने वाला है बहुत अच्छा होने वाला है, तो भविष्य के विचार आने कम हो गए। अभी सिर्फ प्रेजेंट के विचार आने शुरू हो गए। तो धीरे धीरे ये राजयोग मेडिटेशन करने से क्या होता है, हमारे विचारों की संख्या कम होने लगती है, पास्ट के विचार भविष्य के विचार आने बंद हो जाते हैं, हम प्रेजेंट में रहना शुरू करते हैं और सिर्फ पॉजिटिव विचार आने लगते हैं। वो स्टेज जिसमें हमारे विचार सिर्फ पॉजिटिव होते हैं, उसको हम शांति कहते हैं। या कहें सिर्फ सत्य संकल्पों में रमण करते हैं तो उसको हम शांति कहते हैं। और जब हम पॉजिटिव विचार अर्थात सत्य संकल्पों में रमण करना शुरू कर देते हैं, अपने को आत्मा देखते हैं दूसरों, मतलब बेसिकली पवित्रता क्या है, अपने को आत्मा देखते समझते हुए दूसरे को आत्मा देखना और आत्मिक व्यवहार में रहना, ये पवित्रता है। शांति माना सत्य संकल्पों में रमण करना। और जब हम सबको एक्सेप्ट कर लेते हैं, जब हमारे पॉजिटिव विचार होते हैं, सबको आत्मा देखते हैं, उसके गुणों को देखना शुरू कर देते हैं, हमारी दृष्टि हंस दृष्टि हो जाती है। दुनिया में आज लोगों की दृष्टि बंगला दृष्टि है। बंगला दृष्टि माना किसी के अंदर अगर 99 गुण है और एक अवगुण है, तो आज के दिनों में आज क्या देखते हैं लोग, वो 99 गुण नहीं देखते, एक अवगुण देखते हैं। और इस एबीसीडी का अभ्यास करते करते क्या होता है, हमारे अंदर क्या हो जाता है कि हमें हमारी दृष्टि हंस जैसी हो जाती है, कि हमें किसी भी व्यक्ति के 99 अवगुण दिखाई नहीं देते, एक गुण उसके अंदर है वो दिखाई देने लगता है। तो जो रूहानी प्यार, शांति के बाद रूहानी प्यार पैदा होता है। रूहानी प्यार की परिभाषा क्या है, अनकंडीशनल डिग्निफाइड रेस्पेक्टफुल एक्सेप्टेंस एंड केयर फॉर ईच अदर एंड एवरीवन, बिना किसी शर्त के आदर के साथ सबको एक्सेप्ट करना, सबको स्वीकार करना और सबकी केयर करना। ये जो स्टेज है, जैसे भगवान हमारे कैसे, शिव बाबा हमारी कैसे केयर करता है, अनकंडीशनल। हम जैसे भी थे, पापी थे, गलत काम करते थे, डाकू थे, चोर थे, स्मगलर थे, गरीब थे, हमने बहुत पाप किए थे, हमने बाबा ने हमें ये नहीं देखा, अनकंडीशनल, तुम जो हो जैसे हो मेरे हो, और डिग्निफाइड, आदर के साथ, रेस्पेक्टफुल हमें एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया और फिर हमारी केयर भी कर रहा है। हम कभी कुछ गलत भी करते हैं, मर्यादा भंग भी करते हैं, आज्ञा तोड़ भी देते हैं, अभी अवज्ञा कर लेते हैं, तो भी बाबा हमको प्यार से देखता है, प्यार से दृष्टि देता है। देता नहीं देता है? देता है नहीं देता है? देता है ना। तो ये बाबा का रूहानी प्यार है। तो ये जो बाबा का रूहानी प्यार, वो हम महसूस नहीं कर सकते हैं। कब नहीं, क्यों नहीं महसूस करते? क्योंकि हम लोगों को जजमेंटल नेचर से देखते हैं, ये ऐसा है, ये ऐसी है, ये ऐसा करता है, ये ऐसा करता है। बाबा का प्यार तो आ रहा है, किंतु हम बाबा का प्यार महसूस नहीं कर सकते। तो बाबा का प्यार हम तब महसूस कर सकते हैं जब हम सबको माफ कर दें, जब हम सबको उसके आत्मिक स्वरूप में देखें। कोई कैसा भी है, मेरा भाई है, मेरी बहन है, बाबा का बच्चा है, और बेसिकली शांत स्वरूप है, पवित्र स्वरूप, शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, सुख स्वरूप, आनंद स्वरूप, शक्ति स्वरूप है। जब इस भाव से देखेंगे तो हमारे अंदर हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, जजमेंटल नहीं होते हैं, ये सुधरने वाला नहीं है, ये सुधरने वाली नहीं है। इस भाव से हम बाहर निकल जाते हैं। जब हम सबको एक्सेप्ट करते हैं, सबको आदर देते हैं, तो फिर तब हम भगवान का प्यार महसूस करते हैं। नहीं तो हम भगवान का प्यार महसूस नहीं कर सकते हैं। तब हम अपने आप को भगवान के नजदीक महसूस करते हैं। और जब हम ये रूहानी प्यार की अनुभूति आने के बाद, फिर हमें अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होती है। अर्थात जब हम अपने को आत्मा, जब अपने को हम परमात्मा के नजदीक महसूस करते हैं प्यार से, तो उसे कहते हैं अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति। इंद्रियों से ऊपर का सुख, देखने का सुख नहीं, पढ़ने का सुख नहीं, खाने का सुख नहीं, बोलने का सुख नहीं, सुनने का सुख नहीं, आत्मा परमात्मा के प्यार में अपने आप को नजदीक महसूस। मैं आत्मा अविनाशी, आत्मा अविनाशी पिता की संतान हूं, ये जो फीलिंग है, मैं बाबा की हूं, बाबा मेरा है, ये जो फीलिंग है, ये फीलिंग माना अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति। ये अंदर से कॉन्फिडेंस आ जाना, बाबा सदा मेरे साथ है, इसको कहते हैं अतीन्द्रिय सुख। और ये अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति जो होती है अंदर से, ये हमारे अंदर सारे हार्मोन्स को ठीक कर देती है, हमारे सारे एंजाइम्स को ठीक कर देती है, हार्मोन्स को नहीं, एंजाइम्स को ठीक कर देती है। बॉडी में जितने एंजाइम्स होते हैं ना, उनको सबको ठीक कर देती है। और फिर इससे इसकी और आगे ABCD का अभ्यास करते जाओ, मनन चिंतन मंथन करते जाओ, और इससे नेक्स्ट स्टेप आता आनंद का। आनंद माना ब्लिस, आन मीन्स बंधन, आत्मा देह और देह के दुनिया के बंधन के पार चली जाती है, आत्मा परमात्मा के प्यार में लवलीन हो जाती है, जो आज का वरदान है ना, आत्मा परमात्मा के प्यार में लवलीन हो जाती है। आत्मा को जरा भी भान देता है देह का, अपनी देह का, देह की दुनिया का। ये जो स्थिति आनंद की स्थिति है, इससे सारे हमारे हार्मोन्स परिवर्तन हो जाते हैं, हाइपोथैलेमस के हार्मोन्स, पिट्यूटरी के हार्मोन्स, पीनियल ग्रैंड के हार्मोन्स, थायराइड का हार्मोन, पेनक्रियाज का हार्मोन, इसका पैराथायराइड का हार्मोन, पेनक्रियाज, एड्रिनल के हार्मोन्स, पीनियल ग्रैंड का हार्मोन ठीक निकलने लगे तो हमारी क्या होता है, हमारी जो है नींद अच्छी हो जाती है, गहरी नींद हो जाती है। अगर इसके पिट्यूटरी के हार्मोन अच्छे निकलने लगे तो हमारी ग्रोथ ठीक होने लगती है, चेहरा फ्रेश होने लगता है, सारे शरीर में एक्टिविटी फास्ट होती है, सेल्स नई बनने लगती हैं, है ना। और थायराइड हो जाए तो हम एक्टिव ज्यादा हो जाते हैं, पैराथायराइड हो जाए तो हमारी हड्डियां मजबूत हो जाती हैं, पेनक्रियास हो जाए तो हमारी शुगर लेवल ठीक रहता है, एड्रेनल ठीक हो जाए तो हम स्ट्रेस फ्री रहते हैं, इजी रहते हैं। तो इस तरह से हमारे हार्मोन्स परिवर्तन होने लगते हैं शरीर के अंदर, सारी बीमारियां, जो भी बीमारियां हमारी ठीक होने लगती हैं। तो ये जो स्थिति है, इसका अनुभव करने से, तो आनंद की जब स्थिति अनुभव हो जाती है, तो फिर क्या होता है, फिर हमारे अंदर शक्तियां आने लगती हैं, शक्तियां। वो जो आनंद की बाबा के साथ 2 मिनट की या आधे मिनट की, 10 सेकंड की मुझे अनुभूति हुई ना आनंद की, 15 सेकंड की, 1 मिनट की, धीरे धीरे बढ़ती जाती है, फिर मुझे परखने की शक्ति आ जाती है कि राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, उसके पहले राइट रॉन्ग की परख नहीं आती। कभी कभी हम दुनियावी आनंद में चले जाते हैं, अल्पकाल के आनंद में खो जाते हैं, अल्पकाल के सुख में खो जाते हैं। वो एक बार आनंद अनुभव कर लिया, असीमित सुख की अनुभूति हो गई, तो फिर हम खोएंगे नहीं। तो परखनी शक्ति आ गई, निर्णय करनी शक्ति आ जाती है, उससे फिर विस्तार को साथ में लाने की शक्ति आ जाती है। वो जो आनंद की अनुभूति आई, उसके लिए हम बड़ी बात को छोटा कर लेते हैं। जब बड़ी बात को छोटा कर लेते, समेटने की शक्ति आ जाती है। और जो बड़ी बात को छोटा करना जानता है, समेटने की शक्ति है, वो सहन कर सकता है। जो छोटी बात को बड़ी करता है, समेटता नहीं है, वो सहन नहीं कर पाता है। और जो सहन कर लेता है, वो समा पाता है। और जो समा पाता है, वो नई बातों का सामना कर सकता है। जो सहन करके समाता नहीं है, वो सामने वाले नई आने वाली सिचुएशन में डरता रहता है, डरती रहती है, जो भी भाई और बहन। और जो सामना करता है, वो दूसरों के साथ सहयोग कर सकता है। तो आठों शक्तियां इस तरह से डेवलप होती है। तो बेसिकली जो योग है, याद है, ये मुरली है बाबा की, इसी का एक एक शब्द, एक एक महावाक्य, इसको अनुभव करना ही योग है। इसको चलते फिरते उठते बैठते हर सेकंड, हर संकल्प, हर श्वास में जितना हो सके, हर काम करते, इस मुरली के एक एक महावाक्य को बहुत गहराई से मनन, चिंतन, मंथन, सिमरण करते करते हमारी पवित्रता बढ़ती जाती है, हमारी शांति बढ़ती जाती है, हमारा सबके प्रति रूहानी प्यार बढ़ता जाता है, और हमारी अत्यंत सुख की अनुभूति बढ़ती जाती है, आनंद की शक्ति, आनंद की अनुभूति बढ़ती जाती है, बाप के साथ का अनुभव बढ़ता जाता है, उससे शक्तियां बढ़ती जाती हैं। और इस तरह से हमारे अंदर सातों, हम सत्व प्रधान बनते जाते हैं, सातों गुणों से भरपूर, और वो आभा मंडल हमारे आसपास इकट्ठा होता जाता है। और ये आभा मंडल कवच का काम करता है, शील्ड का काम करता है, जो कि आने वाली परिस्थितियों को, सामने वाले व्यक्तियों से, जो उनके संकल्प, उनकी शुभ भावनाएं हमें अटैक नहीं करती हैं। इवन प्रकृति भी, बाबा ने कुछ लास्ट संडे की मुरली में बताया था कि प्रकृति भी आपको सामने से देख के क्या करेगी, दो घर के पास भूकंप आया होगा, वहां विनाश हो रहा होगा, आपके पास आके रुक जाएगी, वहां पानी आ रहा होगा, आपके पास आके रुक जाएगा, वहां सूली होगी, आपको कांटा होगा। तो ये स्थिति, जितना हम इस अभ्यास को बढ़ाते जाएंगे, हमारा उतना आभा मंडल बड़ा होता जाएगा, और वो आभा मंडल हमारी हीलिंग एनर्जी के रूप में हमारे मन की बीमारियों को, शरीर की बीमारी को ठीक करता रहेगा।